हमने उनकी मर्जी के खिलाफ फैसला दिया, तो उसके बाद कुछ दिनों बाद एक और पॉलिटिकल केस हमारे पास आ गया, तो फिर हमें सिर्फ आईएसआई वालों ने थ्रेट नहीं किया बल्कि हमें अफगानिस्तान के टेलीफोन नंबरों से कॉल्स आई और वो दहशतगर्दों की कॉल्स थी और उन्होंने कहा कि आपने अगर ऐसा किया तो ऐसा होगा। और आपने देखा कि दो केसेज आए थे पिशावर हाईकोर्ट के पास पीटीआई के, एक मखसूस नशिस्तों वाला था और एक दूसरा था बल्ले वाला। एक में उन्होंने पीटीआई के हक में फैसला दिया और चंद दिन बाद दूसरे में उन्होंने उनके खिलाफ फैसला दे दिया। आम लोग परेशान थे कि ये पिशावर हाईकोर्ट कर क्या रही है, तो अब जो रिपोर्ट आई है उससे लोगों की ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी कि वहां से दहशतगर्द कॉलें कर रहे हैं। अब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि अगर आईएसआई वाले एक काम चाहते थे पिशावर हाईकोर्ट के जजेस से और उन्होंने नहीं माना, तो फिर किसने दहशतगर्दों को एक्टिवेट किया, किसने उन्हें कहा कि अफगानिस्तान में जो तरीके तालिबान पाकिस्तान वाले हैं मुबैना तौर पर वो वहां के टेलीफोन नंबरों से कॉल करें और पिशावर हाईकोर्ट के जजेस को थ्रेट करें। इसी तरह की रिपोर्ट सिंध हाईकोर्ट, पंजाब हाईकोर्ट, बलूचिस्तान हाईकोर्ट, तमाम अदलिया के जो जज साहबान हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम पे प्रेशर नहीं है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज हमें दबाव हम पे नहीं डालती। सब ने कहा है कि हाँ दबाव डालती हैं, सिर्फ एक हाईकोर्ट ने कहा है कि ये मामला हमें वहां तक नहीं लेके जाना चाहिए था, हमें अपने तौर पर इसे हल करना चाहिए था। लेकिन अब अपने तौर पर हल करने वाली सूरत हाल नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और वहां की जो समाज की सूरत हाल है वो डेली कॉम देख रही है। अब शायद काजी फायज ईसा साहब को इस बात का भी अफसोस हो रहा है कि ये मैंने लाइव क्यों कर दिया था, क्योंकि उसमें काजी फायज ईसा साहब का एक एक एक्ट, एक एक उनकी आंख की जुम्बिश वो रिकॉर्ड हो रही है और पूरी कौम देख रही है। जी
बहुत शुक्रिया सर। मैं यहाँ पे दो चीजों को शेयर करती चलूँ। एक तो थोड़ा मामलात को बेहतर करने के लिए जनरल लेफ्टिनेंट जनरल लोधी रिटायर्ड वो कर रहे हैं, उन्होंने पांच नुक्ता दिए हैं। ऑल पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड मेजर नेशनल इंस्टीट्यूशन शुड इमीडिएटली प्रेस फॉर कॉलिंग एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। और उन्होंने कहा है कि एमिकेबली मामलात को हल करना चाहिए। एक उन्होंने तजवीज दी है इमीडिएटली कॉल फॉर द सेसेशन ऑफ द बैड माउथिंग, ये जो मुख्तलिफ पार्टियों के लोग बुरे लफ्ज करके लोगों को मतलब ऑल पोलराइज करते जा रहे हैं, इसको रोका जाना चाहिए। ऑल पोलिटिकल पार्टीज बाय द गवर्नमेंट एंड अदर शुड बी इमीडिएटली हॉल्टेड एंड रिवर्स, यानी पोलिटिकल प्रोसिक्यूशन, ये जो सियासी लोगों को कैद किया हुआ है उन्होंने कहा फौरी तौर पर इनको रोकना चाहिए। जुडिशरी एंड ट्रिब्यूनल्स शुड बी टोटली फ्रीड एंड एट द डिस्पेंस ऑफ स्पीडी सिस्टम के ऊपर, बड़ी अच्छी उन्होंने कही है। और वो कहते हैं कि रहना तो हमने इसी मुल्क में ही है। और मेरा आपसे भी ये सवाल है कि बाज़ुकात हम सॉरी मेरा सवाल, मुझे इसका तसल्ली बख्श जवाब चाहिए। सर आप नॉर्थ अमेरिका में हैं, वी हैव टू वर्क वन पार्टी एज अ रूलिंग पार्टी एंड अदर पार्टी एज अ ऑपोजिशन, मगर अगर हम ये कहें कि वो भी चोर है मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता, तो फिर आप मुल्क छोड़ दो। बिकॉज उस मुल्क में रहते हुए थे तो एक पार्टी को अगर इक्तदार मिलेगा तो एक, वी हैव टू वर्क टूगेदर, देर इज नो एस्केप। इन अदर वर्ड्स मुस्लिम लीग नून चाहती है दो तिहाई अक्सरियत हो, पीपल्स पार्टी चाहती है दो तिहाई अक्सरियत, तो हर आदमी बेताज बादशाह बनना चाहता है। वी हैव टू वर्क टूगेदर, ये नहीं कि आप दिन के साथ रात है, सफेद के साथ स्याह है, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। और अगर बाज लोग ये चीज लोगों में बोना चाहते हैं कि नहीं बाकी सबको एबॉलिश कर दें, उनको एलिमिनेट कर दें वहां से, उनको जस्ट रिमूव देम फॉर एवर एंड देयर इज ओनली वन पार्टी रहे, तो सर दिस इज नॉट पॉसिबल, हाउ वुड यू एक्सप्लेन?
अच्छा ये जो मसला है ना वन पार्टी वाला, आप देखेंगे जब जब हमारा कोई लीडर चाइना जाता है तो वहां जाके उसे ख्याल आता है कि ये बड़ा जबरदस्त काम है, ये कम्युनिस्ट पार्टी वहां वन पार्टी है और बड़ी मजे से वो हुकूमत कर रहे हैं। हर किसी के यही ख्वाब और ख्याल होता है, जब वहां मियां नवाज शरीफ साहब गए, जरदारी साहब गए, इमरान खान गए, सबको यही ख्याल आता है। लेकिन इस तरह चलता नहीं है। अगर हमने नाम पाकिस्तान का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा हुआ है तो हमें हर एक को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। स्पेशली हमारे कुछ लोग प्रोग्राम में जब आने जाता है प्रोग्राम तो लोग कहते हैं जी आप जरदारी साहब या मियां साहब क्यों कहते हैं, ऑब्वियसली जो इमरान खान के फॉलोअर हैं वो कहते हैं जी आप साहब क्यों लगाते हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि भाई जब तक आप लोग पाकिस्तान का एक बंदा भी इनको वोट देगा मेरे लिए वो रिस्पेक्ट मैं उनकी करता रहूंगा। जिस दिन आप उन्हें वोट देना छोड़ देंगे, उन्हें असेंबलियों में से निकाल देंगे, मैं उन्हें साहब नहीं कहूंगा। लेकिन हम रवानी में भी साहब कह देते हैं और दूसरा कुछ हमारी बचपन से या हमारे पाकिस्तान की हमारी जो तहजीब है, सकाफत है, उसके मुताबिक हम रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की और रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं। एक बात, दूसरी बात, आप जो बात कर रही हैं ना कि जी चोर चोर कहा, और बिल्कुल मैंने किसी से बात नहीं करनी, इमरान खान का ये रवैया कि ठीक है मैं बात नहीं करनी, लेकिन इमरान खान ने अपने बंदों को तो नॉमिनेट किया हुआ है ना, बात करें उनके साथ बैठ के, उसने कमेटियां बनाई हुई हैं, असद कैसर, शिबली फराज, उमर अयूब, ये लोग बात करने के लिए तैयार हैं, बात करें उनके साथ, लेकिन वो नहीं करना चाहते। इस वक्त सारे खायफ हैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी से। और जहां तक बात है कि जी एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ये जो दिन दहाड़े डाका डला है 8 फरवरी को, इसके बाद आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान के अवाम, इमरान खान चाहे भी आज अगर कि पीछे हो जाता हूं मैं इससे फार्म 45 वाले और फार्म 47 वाले मामले से, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम नहीं चाहेंगे कि इमरान खान पीछे हो जाए। इमरान खान को पता है कि उसने लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर दी हैं और बजा तौर पर हाई की हैं। आप अगर आज मौलाना फजल रहमान की वो स्टेटमेंट इस बात से कतअ नजर कि ये मौलाना है और फजल रहमान साहब हैं और उनके चेहरे को साइड पे कर दें, लेकिन जो बात की है उन्होंने कि हम फार्म 1947 में हम इकट्ठे आजाद होते हैं, वो तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में जाने के लिए तैयार बैठा है हमारा पड़ोसी, और हम अभी तक फार्म 47, वो एक इकोनॉमिस्ट या कौन सा मैगजीन था, उनके टाइटल पे ये स्टोरी छपी थी कि फ्रॉम 47 टू फार्म 47, कि हम 1947 में चले थे और आज हम फार्म 47 पे खड़े हैं। क्या हमने ये दिन देखना था? अगर इसी सूरत में इमरान खान जैसा एक लीडर दस्तियाब हो ही गया है और अगर सूरत हाल ऐसी बन ही गई है कि हमें जस्टिस बाबर सत्तार जैसे अदलिया में भी लीडर मिल गए हैं और उन्होंने कायल भी कर लिया है अपने साथियों को, इस वक्त पाकिस्तान की पांच हाई कोर्ट के जज साहबान एक नुक्ते पे खड़े हैं कि हाँ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, चाहे वो आईबी है, चाहे एमआई है, चाहे आईएसआई है, इन्हें मुदाखलत हमारे काम में नहीं करनी चाहिए। और जब तक पाकिस्तान में अगर अदालतों में से इंसाफ लोगों को मिलता रहेगा तो ये बाकी मसाइल जो है हमारे पॉलिटिकल और समाजी मसाइल और इकोनॉमी के हवाले से मसाइल, ये सारे हल हो जाएंगे। हमारा मसला ये है कि जब जब किसी हुक्मरान ने कोई गलती की, जब जब किसी फौजी आमिर ने कोई गलती की, उसे वहां से स्टैंप लगती रही हमारी अदलिया से। अब अगर पहली दफा हमें अदलिया के मामलात बेहतर करने का मौका मिला है तो इस मौके पे हमारी कौम को डट के उन अदलिया के साथ खड़े हो जाना चाहिए और हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए कि कौन खड़ा है, कहाँ खड़ा है, सबको उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि लोग वाकई, ये पॉलिटिकल पार्टीज भी उनके साथ खड़ी होंगी, मजबूर होंगी उनके साथ खड़े होने पे, सिर्फ इस वजह से कि हमारी अवाम अदलिया के पीछे इस वक्त खड़ी है, इन जज साहबान के पीछे खड़ी है, जस्टिस बाबर सत्तार हो, महमूद जहांगीरी हो या बाकी जज साहबान।
मैं इसी टॉपिक को यहीं क्लोज करने से पहले, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसको मैं कैरी ऑन करूं, अभी आपने जो बड़ी खूबसूरत तफसील बयान की कि क्योंकि 8 फरवरी को ये हो गया था, सर जी 8 फरवरी को जो कुछ हुआ, राणा सनाउल्ला तक का तो हरा दिया, क्योंकि राणा सनाउल्ला को अगर ना हराते तो इनको इंटीरियर मिनिस्टर जो है ये कैसे लगाते आपके, ये जो शहजादा मोहसिन नकवी साहब हैं। तो 8 फरवरी का इमरान खान की जो टीम शिबली फराज वगैरह हैं, दे आर रेडी टू मीट विद दी एस्टेब्लिशमेंट, बट दे मस्ट सिट विद देम एज वेल, उनके साथ भी ज्यादती हुई है, एस्टेब्लिशमेंट ने उनको जिताया जिसको वो चाहते थे। ये जो फॉर्म 47 और 45 का मामला है, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों की हद तक नहीं है, जाहिर है पॉलिटिकल पार्टियों ने उन कंधों को इस्तेमाल किया, मगर इनके भी ग्रुप के लोग पीछे से जाके एस्टेब्लिशमेंट से मिलना चाहते हैं, व्हाई डोंट दे सिट डाउन टुगेदर।
अच्छा, जो पीटीआई वालों का मौकफ है ना कि हम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से क्यों मिलना चाहते हैं, वो समझते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और बाकी लोग जो हमसे मिलना चाहते हैं ये सिर्फ हमारे टाइम वेस्टर हैं, ये हमारा टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि इनके इख्तियार में, अगर इनके इख्तियार में होता तो ये जावेद लतीफ को जिता देते, अगर इनके इख्तियार में होता तो राणा सनाउल्ला जीत जाते, अगर इनके इख्तियार में होता तो खुर्रम दस्तगीर जीत जाते। बिल्कुल ज्यादती हुई है, यही तो मसला है कि पिक एंड चूज का सिलसिला खत्म होना चाहिए। और पिक एंड चूज करने वाला कौन है? वर्दी वाला।
तो यही मेरा रोना है, यही मेरा रोना है, वी कैनॉट डाइवोर्स ईच अदर, वी हैव टू लिव टूगेदर इन पाकिस्तान। आप वो जो पिक करते हैं, जो जिसको चाहे उसको ऊपर बिठा देते हैं, उनको डाइवोर्स करने की बजाय हम चाहते हैं, हम जी मैं पीपल्स पार्टी के साथ नहीं काम करना, मैंने जी मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं काम करना, तो भाई फिर आपने भी उन्हीं के साथ काम करना है जिसके साथ अंदर बैठ के जरदारी साहब ने मुलाकात की, जिसके साथ अंदर बैठ के शहबाज शाह साहब ने अपने सगे भाई के पेट में भी छुरा घोंप दिया, तो फिर आप भी उन्हीं के साथ काम करना चाहते
हैं। जो पीटीआई वालों के चार नुकात सामने आए हैं, जो हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि तीन नुकात हमारे इमरान खान ने हमें दिए हैं टॉक करने के लिए, और चौथा नुकता वो कहते हैं इमरान ने नहीं दिया, हमने ऐड किया। तीन नुकात क्या है उनके? पहला नुकता उनका यह है कि हमारे कारकुनान को रहा किया जाए, اب ان میں سے کارکنان آپ دیکھیں ان کا جرم ہوگا کوئی 6 مہینے سزا کا یا 9 مہینے سزا کا، لیکن سال سال ہونے والا ہے ان کو، ابھی 5-9 مئی کو ان کا سال ہو جائے گا. اب آپ ان کی جتنی مقررہ سزا ہے ان کے جرم کی اس سے زیادہ آپ انہیں پابند سلاسل رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ تو زیادتی ہے، رہا تو کرنا چاہیے، یہ جائز مطالبہ ہے اور وہ عام لوگ ہیں. دوسرا ان کا مطالبہ ہے کہ فارم 45 کا جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق جو ہے سیٹیں ڈیسائیڈ کی جائیں. اب یہ بھی کوئی غلط بات نہیں ہے فارم 45 کے مطابق. ہاں فارم 45 کو غلط اگر ثابت کر سکتی ہے مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی والے یا جو بھی جیتے ہوئے ہیں ان سیٹوں سے تو وہ ثابت کریں. جس طرح کے پی کے میں علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر یہ شکایت ہے کہ ہم نے انہیں ہروایا ہے کے پی کے میں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے حلقے سمیت ڈیر اسماعیل خان سے جو جیتے ہیں صوبائی اسمبلی بھی اور قومی بھی جیتے تھے اور اب دوبارہ ضمنی میں ان کے بھائی جیت گئے ہیں فیصل امین گنڈا پور، وہ کہتے ہیں جس جس حلقے پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اعتراض ہے ہم وہ کھولنے کے لیے تیار ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہمارا نہیں ہے، اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، انہیں بلا لیں اور کھلوا لیں. اس طرح اگر ایک ایک حلقے پہ کھلوانے کے لیے مسلم لیگ نون بھی تیار ہو جائے اور پیپلز پارٹی بھی تیار ہو جائے اور باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن پہ اعتراض ہے وہ بھی تیار ہو جائیں تو مسئلہ سالو ہو جاتا ہے، لیکن کوئی کھلے دل دماغ سے تیار نہیں ہے ان کو حلقے کھولنے کے لیے.
سارے سارے کھلے دل سے بڑی سرکار کی قدموں میں بیٹھنا چاہتے ہیں.
مطالبہ ہے بڑا جائز مطالبہ ہے عمران خان کا کہ 9 مئی کے واقعہ کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے. اب عمران خان یہاں اگر ڈیل کرنا چاہتا تو وہ کہہ سکتا تھا کہ بھائی مجھے بھی رہا کرو، میرے کارکنوں کو بھی رہا کرو اور خدا حافظ گھر چلتے ہیں، لیکن اس نے کہا نہیں 9 مئی کو میں ایسے جانے نہیں دوں گا، اس کی جوڈیشل انکوائری کرائیں، پتہ چلے کہ یہ 9 مئی کرایا کس نے ہے. وہ بھاگ نہیں رہا اس جوڈیشل انکوائری میں، یہ ثابت بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے کرایا، لیکن پھر بھی اس نے جس طرح اس نے نیوٹرل امپائر والا کام کہا تھا کہ یہ نیوٹرل امپائر ہوں گے، حالانکہ اس وقت جب ہوتا تھا انڈیا کی ٹیم پاکستان آتی تھی تو یہاں محبوب شاہ اور خضر یاد دو ہمارے امپائر ہوتے تھے، ڈٹ کے بےمانی کرتے تھے، اور جب ہم وہاں جاتے تھے تو ان کے وہاں ایک پانڈے ہوتے تھے اور ایک اور ان کے ہوتے تھے امپائر انڈیا میں، وہ ڈٹ کے اپنی ٹیم کے حق میں کرتے تھے بےمانی. کام ٹھیک تھا کہ ادھر آتے تو ہم ٹیسٹ میچ اور ون ڈے جیت جاتے تھے تو وہاں جاتے تھے وہ جیت جاتے تھے، لیکن عمران خان نے کہا نہیں، اس نے نیوٹرل امپائر لے کے آیا جس میں ہارنے کے چانسز تھے اور ہم نے بعد میں میچز ہارے بھی اس کی وجہ سے، لیکن یہ کام کرنا پڑتا ہے آپ کو نیوٹرلٹی کی طرف جانے کے لیے. اگر آپ نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں یا نیوٹرل فیصلے دیکھنا چاہتے ہیں تو عمران خان نے تو جوڈیشل کہا ہے کہ جوڈیشل انکوائری کرائیں، تو مطالبات اس کے ٹھیک ہیں. اب صرف مسئلہ یہاں ہم روک کے کھڑے ہیں کہ جی وہ مطالبات ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے کیوں کر رہے ہیں، اور بھائی جس کے پاس اختیار ہے اسی کے پاس ساتھ مطالبات کرنے ہیں نا. اگر شہباز شریف صاحب صبح سٹیٹمنٹ دیں کہ عمران خان صاحب آپ کو جی ایس کیو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ٹیم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو کچھ ملے گا میری گورنمنٹ سے ملے گا، آئیں میرے ساتھ بیٹھیں، اپنے 3 بندے 4 بندے جو بھی آپ بھیجنا چاہتے ہیں بھیجیں، میں بات کرتا ہوں اور میں ٹیبل پہ فیصلہ کر کے اٹھوں گا. اگر تو شہباز شریف صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے دیں اس کے بعد عمران خان کہے کہ نہیں میں نے پنڈی جی ایس کیو ہی اپنے بندے بھیجنے ہیں، تو پھر بالکل ہم سارے مل کے عمران خان پہ تنقید کریں گے کہ بھائی تو پنڈی کی طرف کیوں دیکھتا ہے بار بار، جب فیڈرل گورنمنٹ موجود ہے ایک، چاہے وہ جیلی مینڈیٹ سے ہی آ گئی ہے، لیکن وہ جب پوری ذمہ داری لے رہی ہے کہ ہاں ہم آپ کی بات سننے کے لیے بھی اور آپ کی دادرسی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، آپ کے جو جائز مطالبات ہیں وہ مانے جائیں گے، لیکن شہباز شریف صاحب تو بول ہی نہیں رہے اس سارے معاملے پہ، تو پھر وہ کدھر جائیں آپ بتائیں.
بہت شکریہ سر آپ کا. اور ابھی آپ نے جو مدعا بیان کیا کہ جو فیصلے کر رہے ہیں اسی کے پاس ہی جانا ہے، تو وہ جو فیصلے کر رہے ہیں پیپلز پارٹی نے بھی انہی کے پاس جانا ہے، مسجد لیگ نون نے بھی انہی کے پاس جانا ہے، اور آپ کو پتا ہے ایم کیو ایم تو آلریڈی انہی کے ہاتھ میں ہے، انہی کے جیب کا ایک باٹ ہے جو کبھی اس کا وزن کم کر دیتا ہے جبھی کبھی اس کا وزن زیادہ کر دیتا ہے یا کم کر دیتا ہے. فیاض بلانند صاحب آپ کا بہت شکریہ سر، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ریگولر وینسڈیز کو کوشش کریں گے ہم آپ سے ملاقات کا سلسلہ اسی طرح رکھیں. تھینک یو ویری مچ سر،
تھینک یو،
اللہ حافظ. فیاض بلانند صاحب سے آپ کی ملاقات کروائی، ہمارا خبروں کا سیگمنٹ ہے، میں کسی کے ساتھ آنکھ نہیں ملا رہی، آئی ایم 15 منٹس ڈیلیڈ. اچھا کوئی بات نہیں، میں نے آنکھ نہیں ملانی،
5:15 پہ ہے،
5:15 14 منٹ 13 منٹ لیٹ ہوں.
لیٹ کہاں سے ہو گئی آپ؟ 5 منٹ
لیٹ ہوں. آپ نے کچھ اور کرنا تھا نا، انٹرویو لینا تھا.
انٹرویو لیں گے، مگر یہ کہ وہ جو ہے ہمارا
خبروں کا
ٹاپ آف دی آور،
ٹاپ آف دی آور. ویلکم بیک، اسٹے ٹیون پلیز.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM جنگس ٹاؤن ٹورانٹو.
770 AM دیا نشریات سننتے حالات حاضرہ تو باخبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشیل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900.
ਬੋਡੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਜਚਦਾ।
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨੋ ਵਿਆਜ।
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 9058747171।
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन आपको टेलीफोन टाउन हॉल में शामिल होने की दावत देता है। मंगल शाम 7:30 बजे से रात 9 बजे तक शहर में कार चोरी होने के हवाले से होने वाली बहस में हिस्सा लीजिए और साथ दीजिए ब्रैम्पटन सिटी के उन इकदामात का जो वो कम्युनिटी को महफूज रखने के लिए उठा रहे हैं। परफॉर्मेंस ऑटो ग्रुप के फ्री सिग्नल ब्लॉकिंग पाउच हासिल करने की मालूमात भी टेलीफोन टाउन हॉल के दौरान हासिल की जा सकती है। कॉल मौसूल करने या ऑनलाइन सुनने के लिए राब्ता कीजिए brampton.ca/engage।
शॉपर्स हो जाइए तैयार, लीजा कॉस्मेटिक्स फिर से लेके आ रहे हैं बड़े ब्रांड्स की बड़ी सेविंग्स और बिग सेल खास आपके लिए।
जी हाँ, वर्ल्ड फेमस ब्रांड के परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स,
80% तक की सेविंग्स ऑन योर फेवरेट ब्रांड्स।
बस आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम।
ध्यान रहे, सेल तो सिर्फ अप्रैल 20th से मई 12th तक ही है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। विजिट lizascosmetics.com।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंट एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773। ऑल स्टेट के साथ आप महफूज हाथों में हैं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
ट्रैकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो, मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लाओ जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com। QTL, बिकॉज वी केयर।
साडे कोल योजना है जो कि ओंटेरियो नु जोड़ रही है। रोजाना आवाजाही नु घटाउण लई नवीआं सड़कां ते हाईवेज दा निर्माण अते वध रहे इलाकियां नु जोड़न लई पब्लिक ट्रांसिट दा विस्तार। एह सब इस लई तां जो तुसी तेजी नाल, सुरक्षित अते आसानी नाल आउण जाण कर सको। ontario.ca/builds ते जाके होर जाणो। इस दी अदायगी ओंटेरियो सरकार वल्लों कीती गई है।
अपने दांतों की हिफाजत के लिए राबिता कीजिए आपकी अपनी डॉक्टर नाज़िया रहमान। लेजर टूथ वाइटनिंग, रूट किनाल ट्रीटमेंट, डेंटल इम्प्लांट्स,
फ्री डेंटल ट्रीटमेंट फॉर किड्स, हेल्थी स्माइल्स ओंटारियो के तहत डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा, 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट, यूनिट 104, मिसिसागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव।
कॉल कीजिए डॉक्टर नाज़िया रहमान 9058721100। कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फॉर फ्री, डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा।
कैनेडियन इमिग्रेशन के लॉस और पॉलिसीज में मुस्तकिल तब्दीलियां आती रहती हैं, इसलिए इंतहाई जरूरी है कि आपका काम माहिराना तरीके से ताज़ा तरीन मालूमात के तहत किया जाए। मेरा नाम यास्मीन तैयबी है और मैं गुज़िश्ता 25 सालों से सिटीजनशिप, पीआर रिन्यूअल्स, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप और एजेंसी के पेचीदा केसों को कामयाबी से करके हजारों लोगों की रहनुमाई कर चुकी हूँ। canamsolutions.ca पर जाकर हमारी फर्म के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में सर्टिफाइड उर्दू टू इंग्लिश तर्जुमे की भी सहूलियत मौजूद है।
ग्रिल इन द हार्ट मिसिसागा में ऑर्डर वाया फोन, इमरान भाई को कॉल करें।
इंतहाई लजीज बिरयानी खाना हो या फिर कढ़ाई खाना हो या फिर स्टेक्स को एंजॉय करना है तो आप ऑर्डर प्लेस कीजिए 9054058383। ग्रिल इन द हार्ट।
अस्सलाम वालेकुम, मैं शबाहत अली फ्रॉम मेगा मनी एक्सचेंज। हम तकरीबन 18 साल से मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान पैसे भेजने हैं या मंगवाने हैं तो हमसे रابطہ कायम करें। हमारा फोन नंबर है 9052794754 और हमारा एड्रेस है 4196 कॉथरा रोड, मिसिसागा।
خوبصورت دانت، با اعتماد مسکراہٹ اور با اعتماد گفتگو، آپ کی اور آپ کے خاندان کی مسکراہٹوں کی زمین، فلنگس گراؤنڈ بریجز کلیننگ، ایکسپٹنگ نیو پیشنٹس، فری کنسلٹیشن، دانتوں کی سنبھال کے لیے ڈاکٹر پدمجا، 310 شیپرڈ ایونیو ایسٹ، 299-7466. گاڑی گھر یا کمرشل، جیسا کہ بزنس، ٹرکس، ڈیلیوری وہیکلز، کارگو وینز، ورک شاپس، گروسری اسٹورز، ریسٹورینٹس کی انشورنس کے لیے وقار عظیم سے رابطہ کیجیے گا. وقار عظیم یقینی بنائیں گے کہ کار، گھر یا کمرشل انشورنس کم از کم ریٹ پر لے کر دیں، مگر کوریج آپ کو بہترین سے بہترین ملے. یقیناً اپنے پیسے اور وقت کی بچت کے لیے ایماندار اور ریلائبل سروس، موسٹ کمپیٹیٹو ریٹس کے لیے وقار عظیم، 416-302-2522، 302-2522. بھائی خواتین کو تو زیورات بہت اچھے لگتے ہیں، چوڑیاں لے لو، کڑے لے لو، چینز لے لو، سٹون جیولریز، روبی جیولرز کا نام یاد رکھنا. شادی بیاہ ہے یا عام کوئی چھوٹا برتھ ڈے پارٹی اپ یا کسی کو گفٹ دینے کے لیے، یو مسٹ وزٹ روبی جیولرز. گولڈ کا ٹریڈ ہے یا پھر ریپیئر ہے، روبی جیولرز، 7086 ایئرپورٹ روڈ، 9056776888. اکرم بھائی یا اسلم بھائی سے بات کیجیے گا.
اسپیئر اینڈ مکھے مینس ویئر کلوتھنگ، فٹ کوالٹی ویلیو ایک ہی جگہ پر، کینیڈا میں دا اونلی ساؤتھ ایشین اون کسٹم سوٹنگ اینڈ شرٹنگ کمپنی. بربری، ہیری روزن، ہوگو باس جیسی کوالٹی آزمائش شرط ہے. 100% اٹالین ووڈ سے بنے سوٹ صرف 249.99 میں. اور بھی زبردست ڈیلز کے لیے وزٹ کریں اسپیئر اینڈ مکھے مینس ویئر، 1535 میرسا ڈرائیو، یونٹ 1920، مسساگا. کال 9056703388، www.spearandmakhe.com.
ایتھے مچھلی، انڈے، دودھ، دہی تے سستے چاول مل دے، ملے پکوڑیاں، تازہ مٹھائیاں، گرم سموسے مل دے، بٹالہ سپر مارکیٹ.
سکار پورو دی واحد تے مثالی سپر مارکیٹ، بٹالہ سپر مارکیٹ، 200 مارکم روڈ، سکار پورو، مارکم روڈ تے اگلنٹن دا سنگم، فون 416-264-3111.
چاندنی
بینکویٹ ہال،
انٹیلیجنٹ چوائس لوکیشنز، ساؤنڈ سسٹم انوویشنز، چاندنی بینکویٹ ہال،
30 ایئرز آف ہاسپیٹلٹی ایکسپیرینس، کارپوریٹ ایونٹ، ایگزیبیشن، ایکسپو اور اینی سیلیبریشن.
سارے پیکج کا نام چاندنی بینکویٹ ہال، آج ہی کال کیجیے 437-218-8734. chandnihalls.ca.
کون کہتا ہے کہ انشورنس کمپنیاں وقت پر کلیم ادا نہیں کرتی؟ ایک اور مسکنسپشن کہ لائف، کریٹیکل ایلنس، ڈسیبلٹی یا پھر ٹریول انشورنس بہت مہنگی ہیں. نہیں صاحب، آپ ایک بار انشور پرو کے فضل ودود سے بات کیجیے گا، 28 سال کا انڈر رائٹنگ کا تجربہ ہے. لائف، کریٹیکل ایلنس، ڈسیبلٹی، ٹریول انشورنس، ہر انشورنس کے معاملے کے لیے فضل ودود آف انشور پرو، 9056075000, 905-607-5000.
فرسٹ مارکیٹ، سیکنڈ مارکیٹ، یا پھر ہوگی لون، سوچو نہ بس، بالکل بھی ہونے ملاؤ فون،
416-502-8000. سٹریس چاہے لاکھ دا ہوئے یا کاکتا، اس زندگی مشکل کر دیتا ہے. باقی باتیں ایک طرف، آپ کے فائنینشل سٹریس کا حل ہے شیراز شفیق، جن کے پاس ہیں ملینز آف ڈالرز کے پرائیویٹ فنڈز. لاسٹ منٹ کلوزنگ ہو یا ڈیفیکلٹیز، سبھی کے لیے شیراز شفیق، 416-502-8000. لائسنس نمبر 10845. انڈیپینڈنٹلی اونڈ اینڈ آپریٹڈ.
ناظرین، ویلکم بیک اگین. اینڈ سب 5:24 اور 20 سیکنڈ ہماری گھڑیوں میں ہو چکے ہیں، اور چلیے صاحب ایک ایک آدھ نیوز کی طرف لے چلیں آپ کو. میرا خیال ان کے پاس ہیں کچھ نیوزیں. تو دس سیگمنٹ آف دا نیوز از براٹ ٹو یو بائی ڈینٹسٹری آن مسز ساگا. ڈینٹسٹری آن مسز ساگا فیملی کہتے ہیں بریسز کاسمیٹک اینڈ امپلانٹ ڈینٹسٹری کلوز ٹو یور ہوم. یہ کہتی ہیں ڈاکٹر نازیہ رحمان ہماری اور آپ کی ڈینٹسٹ. نیو اینڈ ایمرجنسی پیشنٹس آر آلویز ویلکم. کمپریہینسو ڈینٹل کیئر مارننگ ایوننگ ویکینڈس اینڈ سیم ڈے ایمرجنسی اپائنٹمنٹس مل سکتے ہیں آپ کو. ڈائریکٹ بلنگ ٹو انشورنس اینڈ ایزی پیمنٹ آپشنس. ڈاکٹر نازیہ رحمان دو کلینک دونوں برامپٹن کے علاقے میں 9058721100 ان کا فون نمبر ہے. ایسٹ اینڈ میں اگر آپ رہ رہے ہیں گروسری چاہیے آپ کو تو صاحب آپ پہنچ جائیے کہاں پر بٹالہ سپر مارکیٹ پر. بٹالہ سپر مارکیٹ آپ کو ملتی ہے 200 مارکم روڈ مارکم اینڈ ایگلنٹن رائٹ ایٹ دا کارنر آف مارکم اینڈ ایگلنٹن. بٹالہ سپر مارکیٹ 416-264-3111 ان کا فون نمبر ہے. مائی اوپن مائک کیفے. اوپن مائک کیفے آپ کو ملے گا 1310 ڈنڈا اسٹریٹ ڈنڈاس اینڈ ڈکسی کے کارنر پر ان مسز ساگا. اوپن مائک کیفے پاکستان کے لذیذ کھانوں کا آپ نے اگر مزہ چکھنا ہے تو سب پہنچ جائیے اوپن مائک کیفے پر. 416-526-6800 ان کا فون نمبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں بات کرتا چلوں صاحب ہیئر میکس کی. شیراز رحیم کا ہیئر میکس ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یا آپ کے گھر میں کسی کو بھی سننے میں کمی یا کمی ہو رہی ہے تو سب ہیئر میکس کے شیراز صاحب سے کانٹیکٹ کریں. دو لوکیشن سے سرو کرتے ہیں آپ کو. ایک ان کی لوکیشن جو ہے یہ آپ کا اللہ بھلا کرے ٹورانٹو میں, ایک مسز ساگا میں. ہیئر میکس کے شیراز یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ساز و آواز کا حوالہ دیا تو صاحب ہم آپ کو آپ کی جو ہیئرنگ ٹیسٹ ہے وہ ایبسولوٹلی فری کر کے دے دیں گے. ہیئر میکس کے شیراز کا فون نمبر ہے 416-792-8792. 416-792-8792. بڑی ترسیوی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں وہ. ارے بھائی میری کب باری آئے گی؟ چلے آ جائے گی کبھی نہ کبھی, آ ہی جائے گی. لے چلے ان کے پاس. چلو صحیح ہے. شازیہ مالک جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام. آج تو بڑی ہنسیاں نکل رہی ہیں. چکر کیا بتائیں کون سی گیم جیتے ہیں, کون سی گیم جیتے ہیں بتائیں ذرا.
نہیں نہیں یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو مسکرا رہے ہو کس غم کو چھپا رہے ہو.
ہاں تم اتنا جو مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو.
وہ بات وہی ہوگی نا. تھوڑے سے الفاظوں کے ہیر پھیر ہو گئے.
جی جی جی.
مگر جناب
شاعر کی تو شاعری کی ٹانگ توڑ دی نا.
شاعر کی ٹانگیں توڑنا ہمارا کام ہے.
اچھا
مگر یہ کرنا کہ بھائی
خوشی خوشی کی خبر سناؤ مجھے. بھائی چھوڑو اب یہ باتیں ساری سناؤ.
خوشی
ہاں کون سی خوشی کی خبر ہے؟ ایک بڑی آپ کے پاس خوشی کی خبر ہے مجھے پتا ہے.
وہ آپ سمجھ رہی ہے خوشی کی خبر ہے؟ خوشی کی خبر کیسی ہو سکتی ہے؟ یہ تو کل میں نے آپ کو کہہ کے یہاں سے اٹھا تھا.
اچھا
میں نے ناظرین اور سامعین کو کہہ دیا
اگر میں براؤن لفافہ پہنا ہوا ہوں گا
کہ آپ جو ہے آپ اس کی پرواہ نہ کریں. یہاں پر جو بھی باتیں ہو رہی ہیں ڈونٹ پے اٹینشن ٹو اٹ. اسپیشلی کیا اسپیلنگ تھی؟
آئی جی این او آر ای.
میں نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ پیچھے سے میرے ایک بہت بڑا لکھا ہوگا. عامر لکھ دو بھائی پیچھے میرے. اگنور. کیونکہ پتا ہے ٹورانٹو میپل لیفس نے تو پہلے ایک دو تین گیم دے دیے باسٹن کو. یہ لو جی کھیلو. اب کل ان کو بند کر دیا. ہم لوگ واپس آ گئے اپنی اصلیت پہ اینڈ ہم نے بیٹ کر دیا.
آج پھر ہاریں گے.
آج ہے نہیں گیم کا.
اچھا ہوا آپ نے آج کا نام لے لیا.
نہیں آج آپ کے نیلے جے کھیل رہے ہیں نا تو آج آپ کے نیلے جے ہاریں گے.
بری طرح ہار رہے ہیں.
اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے. اچھا بھائی صاحب بڑا ایک کوشچن ہے جو کسی نے بابا جی سے پوچھا پر بابا جی کو بھی اس کا جواب نہیں پتا. آپ کو پتا دادا جی کتنے گیانی ہیں بتائیں ذرا. اگر سرسوں کا تیل ابھی پڑا ہوا ہے
ہاں جی
اور اگر آپ نے اس کو جو ہے کل نہیں پرسوں لگانا ہے تو پھر کیا بن جائے گا اس تیل کا؟
سرسوں کا تیل ہے اور آپ نے آج نہیں پرسوں لگانا ہے تو سرسوں کے تیل کا کیا بنے گا؟ اس میں
مکھیاں پڑ جائیں گی. کچھ نہیں ایسا
نہیں. اس کو کھانے پکانے میں ڈال لو.
اچھا چلو ٹھیک ہے. نہیں بابا جی کو اس کا جواب نہیں آیا تو آپ کو کیسے آئے گا ہیں؟ जो सरसों का तेल आज आप नहीं यूज कर सकते हैं, अगर आपने परसों यूज किया तो वो फिर सरसों का नहीं परसों का तेल बन जाएगा। ग्रेड फाइव जोक,
व्हाट अ लेम जोक।
ऑफकोर्स ग्रेड फाइव के जोक्स तो ऐसे ही होते हैं, क्योंकि जो आपसे इंटेलेक्चुअल किस्म के क्वेश्चन किए जाते हैं वो तो आपके ऊपर से गुजर जाते हैं।
गुड वन, गुड वन,
गुड वन है ना।
हाँ जी, गुड वन,
ये ग्रेड फाइव है। और आज आपने जो कमीज है फिर बड़ी नई सी लगाई हुई है, ये कहाँ से आई है ये कमीज?
बस
कौन दिला रहा है ये कमीज और कौन लगा रहा है ये कमीज?
कुछ चाहने वाले ऐसे भी हैं जो
नई नई कमीजें दिलाते रहते हैं,
याद देते रहते हैं।
अच्छा अच्छा, यानी आप इतने कोई कंजूस हैं उनसे हमारी मुलाकात कभी ना कराना।
ले, मेरी भी कमीज़ कौन लेके आएगा?
उनको जुतियां ही दे दो,
उनकी बजट भी तो होती है ना कोई चीज।
हाँ अच्छा अच्छा,
आपकी तो वो भी बहुत वो है। पता नहीं कौन कौन से सेल लो रहे हैं और पता नहीं कौन कौन से आप
मांगते
सेलर हो, तो आप अगर वो सारी चीजों को मांगेंगे तो उनका तो बजट खत्म हो जाएगा।
फिर
मेरे लिए कहेंगे सॉरी सर, आपके लिए इस दफा तो कुछ नहीं है, अगले महीने देखेंगे।
वो एक बैठा हुआ था ना हमारा कराची का मासूम, लेकिन आपको पता ना कराची के लोग इंटेलिजेंट बड़े होते हैं। वो बैठा हुआ था एक फ्रेंच के साथ, तो ये फ्रेंच अपनी बड़ी शो मार रहा था ना, ओ आई ईट क्रोसों एंड आई वेयर ई सॉलरों, ऐसे करके। तो कहता है तुम ऐसे बोल सकते हो? कहता है यस कराचियों।
ये मतलब ये इतने लेम जोक्स का
नहीं, कहने का मतलब ये कि पाकिस्तानियों को सड़ना आता है लोगों को है।
अच्छा
हाँ हाँ, वो कह रहे हो तुमने कौन सी ऐसी बड़ी बात की, हमारे पास भी है लोर लो 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 ऐसे वाले, हमारे पास
कराची लो
कराची लो लाहौर है हमारे पास, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम कोई खास लोग नहीं है।
आप लाहौर हो?
लाहौर हो,
लाहौर हो,
लाहौर हो, कितना हूँ फैसलाबाद हूँ,
फैसलाबाद
ऐसे। ठीक है जी, अच्छा जी, अच्छा जी, मायूब भाई का तो मेन एजेंडा है, उन्होंने मुझे काम नहीं करने देना है, लेकिन मेरा तो आपके साथ बड़ा प्यार है, मैंने तो काम करना है।
क्या काम करना है आपने?
हरवे शरवे कोई सुनानी है? अच्छा जी, मुझे आपके बहुत सारे प्यारे मैसेजेस कुछ आए, एक इश्तियाक साहब थे, दो नाम मैं भूल गई हूँ। आपने कहा जी अब तो आपका टाइम बढ़ गया है तो आप स्पेशल रिपोर्टें कब लाएंगी? तो जनाब आज से स्पेशल रिपोर्टें जो है हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टाइम बढ़ गया है, तो हम अब आपको बहुत स्पेशल रिपोर्टें दिखाया बताया करेंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू फिर से द वायर के जो सीनियर एडिटर हैं करण थापर साहब ने किया है, और उसके अंदर जो हैं बहुत सारे ज्ञान और रेवलेशंस और बड़ी बातें आई हैं, वो हम आपके साथ करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी अवर स्पेशल रिपोर्ट राइट एट द एंड ऑफ द न्यूज, वो हम आपके साथ आज करेंगे। बट दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय लीजास कॉस्मेटिक्स, और इनकी जो 2024 स्प्रिंग सेल है ये अब चल पड़ी है, और वो कहते हैं जी कि अब आप May 26 से May 29 तक जा सकते हैं, और उनको वहां पे जो भी बिग ब्रांड्स हैं उनकी आप जो खरीदारी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और इसके बाद जो है आपके पास टाइम होएगा May 3 से 6 एंड फिर यानी कि पहले उससे और फिर उसके बाद May 10 से 11 भी अभी आप कर सकते हैं। और जनाब ये जो है दे आर लोकेटेड एट 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कम में, तो आप वहां जाएं और अपने मतलब की सारी जो अच्छी चीजें हैं परफ्यूम्स कपड़े जूते पर्स जो भी आप लेना चाहते हैं आप वहां पे ले सकते हैं, 80% ऑफ है। और जनाब अगर आपको कोई भी लॉ से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए तो आप मलिक लॉ ऑफिस जा सकते हैं, यहां पे होते हैं मोहम्मद अतीक मलिक साहब, इनका नंबर है 9052914455, आप इनके पास जाएं और इनसे मलिक लॉ ऑफिस में लॉ की सुविधाएं लें। और जनाब डॉक्टर फियाज कुरैशी ये जो आप हैं, बाकी सारी डेंटिस्ट्री इनसे कराएं, सेडेशन डेंटिस्ट्री ना कराएं क्योंकि ऐसा ना हो आपके असली दांत निकाल लें। नहीं नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। बहुत जबरदस्त सर्विसेज देते हैं जी ये, ओरल सर्जरी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री एंड ऑफ कोर्स सेडेशन डेंटिस्ट्री, और बड़े ही स्वीट किस्म के बंदे हैं। इनके दो जो हैं वो हैं क्लिनिक्स हैं, एक मिसेस सागा में, उसका नंबर है 9052325678, और दूसरा स्कॉर्ब्रो में 416757999 उस क्लिनिक का नंबर है। ठीक है जी, तो ऐसे है। अच्छा जनाब, आज जो हमारी सियासत है, मुझे लगता है पाकिस्तान से ना कुछ गर्मी आ रही है दुनिया के अंदर, है तो ये सारी फैलती जा रही है होले होले पाकिस्तान
से. कम्स टू सियासत,
हाँ
सब
हमारे पाकिस्तान से सीख रहे हैं.
सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे पास
है यस. बल्कि अगर ये छोटे मोटे कनेडियन एमपीस कहते हैं ना, ये तुमने हम तुम्हें बताएंगे क्या करेंगे, तो हम उनको कहते हैं जिस जगह के तुम स्टूडेंट हो उसके उस यूनिवर्सिटी के हम प्रिंसिपल रहे हुए हैं.
हाँ जी.
तो इसलिए हमसे सीखो इन चीजों को. तो ये गर्म होती जा रही है सियासत जी कनेडा के अंदर भी. सबसे पहले तो आप मामा को बताएं कि पीएम पॉलिवर साहब ने आज ट्रूडो साहब को कहा है कि रिजेक्ट करें, बिल्कुल एब्सोल्यूटली रिजेक्ट कर दें ये जो ट्रूडो की रिक्वेस्ट है टू डीक्रिमिनलाइज ड्रग्स. और उन्होंने इनको ब्लेम किया है कि आपकी जो पॉलिसी बीसी के अंदर जैसे लेकर आए थे तो उसने बहुत ही केओस ओवरडोज डेथ्स जो हैं यहां पे क्रिएट की थी, और हॉस्पिटल्स जो थे उनके अंदर प्रॉब्लम्स आए थे, प्लेग्राउंड्स, पार्क्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सब जगह के ऊपर इस ये जो ड्रग यूज था और ओवरडोज ड्रग डेथ्स हुई थी इनका असर आया था. वो कहते हैं जी इससे बुरी क्या बात है कि टैक्स पेयर के मनी को आप हार्ड ड्रग प्रोग्राम के ऊपर यूज कर रहे हैं जिससे कि वल्नरेबल कैनेडियंस, फॉर एग्जाम्पल द टीनेजर्स एंड किड्स जो है उससे बहुत नुकसान उठाएंगे. इन्होंने कहा जी कि आप ट्रूडो साहब को कहा कि रिवर्स करें, आपने ये जो सपोर्ट दी थी टू लीगलाइज क्रैक, कोकेन, हेरोइन, मेथ और अदर हार्ड ड्रग्स, और आप जो है इनकी ये जो आपने एक्सपोर्ट किया है आइडिया जिसकी के वजह से ये बड़ा ही क्रिमिनल किस्म का ये सारा कुछ सिस्टम चल रहा है, इसको बंद करने की जरूरत है. और फिर यही चीजें जो हैं ये लीड करती हैं, क्योंकि जो वल्नरेबल लोग जो ड्रग्स के आदी हो जाते हैं फिर उनको दूसरे क्राइम्स में भी डाला जाता है जैसे कि कार थेफ्ट्स, एक्सटॉर्शंस, कार जैकिंग और वायलेंट क्राइम्स के अंदर. और आपका जोर तो होना चाहिए ट्रीटमेंट और रिकवरी के ऊपर, डिटॉक्स, रिहेबिलिटेशन, काउंसलिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, जॉब ट्रेनिंग के ऊपर, तो बजाय इसके तो आप जो है इसको आप सपोर्ट कर रहे हैं ये और लीगलाइज कर रहे हैं. अच्छा, इसका जवाब देते हुए ट्रूडो की जो मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ हैं डॉक्टर अलीन डिवेला, उन्होंने कहा जी कि सिटी का स्टैंस शायद प्रीम जो है पेयर पॉलिवर साहब नहीं समझ सके हैं. ये जो हम ड्रग्स को लीगलाइज कर रहे हैं ये दिस इज एग्जैक्टली जो कनाडा के अंदर एक्ट है जिसके अंदर कहा गया है कि इन चीजों में फर्दर इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है. तो ये जो इम्प्रूवमेंट है उसके अंदर जो है ये सारी चीजें जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन, ये सब उसका हिस्सा फिर होंगे. लेकिन अगर इलीगल ड्रग सोर्सेज से बच्चे ड्रग्स लेंगे तो उसमें नुकसान ज्यादा है.
मगर आप किसी को अलाउ कर रहे हैं क्या यू कैन
लीगलाइज कर
मच, लीगलाइज कैन कैरी दिस मच ड्रग्स फॉर योर ओन यूज, सो वो भी गलत है. और ये जो पीएम पॉलिवर साहब कह रहे हैं वो एक लिहाज से वो भी गलत है कि उनको लीगलाइज नहीं करना चाहिए. मगर ऑन दी अदर हैंड यस, रिहैब वगैरह के लिए उनको जरूर उस पर और तवज्जो
देने की जरूरत है. अच्छा जनाब, इसी तरह जो है पीएम पॉलिवर साहब और ट्रूडो साहब के बीच में कल काफी हॉट एक्सचेंज हुआ वर्ड्स का, और चीजें इतनी गर्म हो गई कि जो हाउस स्पीकर थे ग्रेग फर्गस, उन्होंने फिर इवेंचुअली पीएम पॉलिवर साहब को कहा कि आप हाउस से निकल के चले जाएं. हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर ये जो है डिबेट हो रही थी और उसके अंदर पॉलिवर साहब जो हैं वो एक्यूज कर रहे थे ट्रूडो साहब को कि आप जो हैं सही तरह से आपका क्या आपकी क्या हैसियत है और आपने तो अपनी एडल्ट लाइफ जो है रेसिज्म में गुजारी है. जाहिर है कि जो 2019 के बीच में आपको पता ही है कि ट्रूडो साहब की एक पिक्चर आई थी जिसमें वो ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और ब्लैक ब्राउन उन्होंने अपना फेस किया हुआ था, उसको कर रहे थे. और फिर उन्होंने इनको कहा जी कि तुम ये जो है बीसी के अंदर डीक्रिमिनलाइजेशन कर रहे हो ऑफ हार्ड ड्रग्स जो है, और इसके साथ साथ तुम जो है ये जो तुम्हारा वैको आइडिया है ये ठीक नहीं है. अच्छा, ट्रूडो साहब जो है वो कुछ चीजों के तो जवाब दे रहे थे, कुछ के जवाब नहीं दे रहे थे. ट्रूडो साहब ने कहा कि ये जो आपकी सारी बात है ये शेमफुल है और स्पाइनलेस लीडरशिप जो है उसको शो करती है. तो जो फर्गस साहब हैं उन्होंने ट्रूडो साहब को भी मना किया, उन्होंने कहा ऐसी लैंग्वेज ना यूज करें. फिर जब पॉलिवर साहब ने भी इनके ऊपर बड़े इल्जाम लगाए, उन्होंने कहा जी कि तुम तो पीएम बनने के लायक ही नहीं हो, ट्रूडो साहब को कहा. उस पर फर्गस साहब ने कहा कि भई आप अपनी जबान जो है दुरुस्त करें, ये बड़े अन पार्लियामेंट्री किस्म के जो हैं आपके कॉमेंट्स हैं और ये बड़ा डिसग्रेसफुल मैनर में आप उनको कर रहे हैं. अच्छा, उसके बाद जो है पॉलिवर साहब ने अब कह दिया कि तुम्हारा वैको आइडिया है, तो फर्गस साहब ने कहा कि भई आप अपने ये वर्ड्स रिप्लेस करें. तो उन्होंने कहा जी कि अच्छा मैं अपने वर्ड्स
को इज विद द वैको टैक्सेस का
हाँ वैको टैक्स बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, आपका वैको आइडिया, आपकी वैको पॉलिसी विद वैको टैक्स, इस तरह करके. तो उन्होंने कहा ये वर्ड वैको जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है. तो कहने लगे अच्छा ठीक है जी, मैं इसको एक्सट्रीमिज्म से रिप्लेस कर देता हूँ. फर्गस साहब ने कहा कि ये एक्सट्रीमिज्म भी वर्ड ठीक नहीं है. कहने लगे अच्छा फिर मैं इसको रेडिकल से रिप्लेस कर देता हूँ. उन्होंने कहा नहीं, रेडिकल भी ठीक नहीं है. आप बिल्कुल ऑल टूगेदर, हाँ आप ऑल टूगेदर, ये प्राइम मिनिस्टर है कंट्री का जिसके लिए आप ये लैंग्वेज यूज करते हैं, आप विदड्रॉ करें. पॉलिवर साहब ने कहा विदड्रॉ तो मैं नहीं करूंगा. तो फिर उसमें फर्गस साहब ने कहा आप जो है ये चेंबर छोड़ के जाएं और आप बाकी की जो डिबेट है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. इसके साथ साथ जो है एक और भी जो इनकी कंजर्वेटिव पार्टी की एमपी थी रेचल थॉमस, उन्होंने भी कहा जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े डिसग्रेसफुल मैनर में बिहेव कर रहे हैं. तो उनको भी कहा कि आपको कोई एक एमपी हो के आपको हक नहीं पहुंचता कि आप प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसे बोले, तो आप भी छोड़ के जाएं चेंबर. अच्छा ये जब हुआ तो उसके ऊपर पूरे का पूरा कंजर्वेटिव कॉकस जो था वो छोड़ के फिर हाउस चला गया. तो ये मतलब पाकिस्तान को लोग सिख रहे हैं देखिए कैसे एक दूसरे, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप पाकिस्तान का कचरा अब इधर ला रहे हैं.
बस ठीक है जी, हाँ. आप चले गए, अब आप अपनी आपस में बातें करते रहेंगे,
आपस में बातें करें बैठ के, ठीक है. आपस में फ्रेंच बोलो, फ्रेंच इंप्रूव करो जी अपनी आपस में बीच बोल के, ठीक है जी. ऐसे हुए. अच्छा जनाब, आज एक नया आंकड़े सामने आए हैं और उनके मुताबिक जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसने जो फंड रेजिंग की है वो फंड रेजिंग उन्होंने बाकी तमाम पार्टियों से ज्यादा की है. ऑफकोर्स फेडरल लेवल पे हम बात कर रहे हैं, फेडरल लेवल पे इन्होंने सबसे ज्यादा जो है वो किया है. तो 2024 का जो फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट थ्री मंथ जो शो करते हैं वो शो करते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी ने 10.7 मिलियन डॉलर्स जो हैं इकट्ठे किए हैं फ्रॉम 51,000 कॉन्ट्रीब्यूटर्स बिटवीन जनवरी टू मार्च, विच इज थ्री टाइम्स मोर देन द लिबरल्स, क्योंकि लिबरल्स ने 3.1 मिलियन जमा किए हैं 27,600 डोनर से. एनडीपी जो है वो सिर्फ 1.3 मिलियन ही जमा कर सकी है फ्रॉम 14,600 पीपल. ब्लॉक की बकवा जो है उसने इकट्ठे किए हैं 342,000 डॉलर्स. ग्रीन पार्टी ने ओवर 400,000 और जो पीपल्स पार्टी ऑफ कैनेडा है उन्होंने 240,000. तो कंजर्वेटिव पार्टी जो है बड़ा पहा गया इनके पास जी,
सपोर्ट है,
काफी सपोर्ट है. ये शो करती है कि इनके पास काफी सपोर्ट है. मोटरिस्ट जो हैं उनको अब कैनेडियन आर्म फोर्सेस जो हैं वो कह रही हैं कि ट्रोनो और वसाका बीच में वीकेंड के ऊपर आपको बहुत ज्यादा इंक्रीज मिलिट्री ट्रैफिक मिलेगी. तो एज अ रिजल्ट जो है आप अपने अल्टरनेटिव बना सकते हैं, प्लान्स बना सकते हैं. वो कहते हैं जी कि यहां पे हम अब अपनी ट्रेनिंग और एक्सरसाइजेस शुरू कर रहे हैं जो फ्राइडे से लेकर संडे तक जारी रहेंगी और ये कॉन्वॉयज जो हैं यहां से गुजरेंगे अलोंग द हाईवे 401 एंड 400 और दूसरी भी. और इन एक्सरसाइजेस का नाम इन्होंने दिया है एक्सरसाइज ट्रिलियम वेंचर. तो लेकिन इसके अंदर वो वेपन्स कोई भी कैरी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं. और वो आपको कॉशन कर रहे हैं कि अगर आप मिलिट्री व्हीकल्स के जो पास ज्यादा ना आए, दूर रहें उससे, साइड पे अपने प्लान्स बनाएं. और वैसे तो मिलिट्री कह रही है कि हमने अपने प्री डिटर्मिंड रूट्स बनाए हैं और सारे हम मेजर्स ले रहे हैं ताकि लोगों को इनकन्वीनियंस ना हो, लेकिन फिर भी चूंकि बहुत बड़ी तादाद में ये फौजी जो हैं और उनके जो ये जो चीजें हैं उनका इक्विपमेंट सड़कों पर होगा, तो आपको बताया जा रहा है कि आप अपने ऑल्टरनेटिव प्लान्स बना सकते हैं. अमेरिका के अंदर जनाब जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं. हम आपको कॉन्स्टेंटली फ्राइडे से हम आपको बता रहे हैं कि ना सिर्फ अमेरिका की आम यूनिवर्सिटियां बल्कि उनकी जो आईवी लीग यूनिवर्सिटियां उनके अंदर भी बहुत ज्यादा प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट जो हैं वो चल रहे हैं. लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया. कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तकरीबन सैकड़ों ही न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के जो बंदे हैं उनको बुलाया गया, इनका जो मैनहट्टन का कैंपस है उसके अंदर, क्योंकि यहां पे जो प्रोटेस्ट थे गाजा के ऊपर वो इतने ज्यादा बढ़ गए और कॉन्स्टेंटली इनको मैनेजमेंट कह रही थी कि आप डी कैंप करें और हटें और ये ना करें, लेकिन ये मान ही नहीं रहे थे. बल्कि एक जो हॉल था उसका नाम तक इन्होंने चेंज कर दिया, उसका ऊपर जो प्लेट लगी हुई थी उसको हटा के हिंद हॉल उसका रखा, क्योंकि ये इन द मेमोरी ऑफ 6-year-old पैलेस्टीनियन गर्ल हिंद रजब जिसको के इजरायलीज ने मार दिया था फरवरी के अंदर, उसके नाम पे उन्होंने हॉल का नाम भी चेंज किया. और अमेरिका में आज जितने भी क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा जी कि जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज हुआ है एग्जैक्टली यही कुछ हुआ था 56 इयर्स बैक जब पुलिस को यहां पे बुलाया गया था हैमिल्टन हॉल में, जिसका इन्होंने ये नाम चेंज किया है टू एंड द 1968 प्रोटेस्ट बाय स्टूडेंट्स अगेंस्ट रेसिज्म एंड वियतनाम वॉर. तो वियतनाम वॉर की याद वहां पे आ रही है, हमने आपको कल भी बताया था। इसके अलावा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जो एलए के अंदर है वहां पे भी ये हुआ। इसमें तो बहुत अगली हो गया सीन, क्योंकि प्रो पैलेस्टीनियन और जो प्रो इजरायली स्टूडेंट्स थे उनके बीच में स्कफल्स हुए, और वो जो प्रो पैलेस्टीनियन जो लड़के लड़कियां थे वो तो चुपचाप बैठे हुए थे, शांति से अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन जो प्रो इजरायलीज थे उन्होंने आके इनके कैंप फाड़े, इनके ऊपर पेपर स्प्रे किया, स्टिक स्टोन्स और जो मेटल फेंसिंग है उससे इनको मारा पकड़ के। तो ये चीज है, इसके लिए भी पुलिस को यहां पे फिर बुलाना पड़ा। इसके साथ साथ छह जो यूके की यूनिवर्सिटीज हैं इंक्लूडिंग शेफील्ड, ब्रिस्टल, लीड्स एंड न्यूकैसल, वहां पे भी मैसिव तरीके से जो है जो ये चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, जिसके के अंदर स्टूडेंट्स ने कहा है कि बिल्कुल इसराइल को कोई भी ब्रिटिश फर्म जो है आर्म्स ना दे, वरना हमारे ये मोर्चे जो है जारी रहेंगे। तो काफी, जैसे हमने आपको कल भी बताया था कि ईयू की भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में चल रहा है, जर्मनी, स्पेन, बेल्जियम, इटली, फ्रांस,
कनाडा में भी है, कनाडा की यूनिवर्सिटीज।
जी जी, कनाडा की भी हमने बताई थी ये न्यूज यहां पे भी, कि यहां पे भी काफी यूनिवर्सिटीज में चल रहा है। तो काफी ये यूरोप के अंदर जो है ये शोर मचा हुआ है, लेकिन ज्यादातर तो पीसफुल ही थे, लेकिन ये जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और ये जो यहां पे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में हुआ ना, दिस इज टू मच नाउ, क्योंकि ये अब बिल्कुल बहुत ज्यादा बुरा होता जा रहा है जो है। एक बड़ी अंदर की स्टोरी आई है और कुछ मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि यूएस, यूके और यूरोपियन यूनियन जो है वो अब कॉन्स्टेंटली यूएई की जो गवर्नमेंट है उसको प्रेस कर रहे हैं कि भाई आपके मुल्क से बहुत सारे जो चीजें जा रही हैं रशिया में वो यूक्रेन के अगेंस्ट जो है यूज कर रहे हैं। आपको बताइए कि अभी कुछ अर्सा पहले बाइडेन साहब की मुलाकात जो है वो यूएई के प्रेसिडेंट के साथ हुई थी, शेख नाहियान के साथ, और उसमें उन्होंने बहुत सारी इस तरह की बातें की थी कि हमको कोऑपरेशन बढ़ाने की जरूरत है और इस तरह करके। तो यूएई के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने कुछ कंफर्म तो नहीं किया कि टॉक्स जो हैं वो क्या चल रही हैं। अलबत्त उन्होंने कहा जी कि ये जो डुअल यूज प्रोडक्ट्स हैं इनकी एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट रशिया को हमने बिल्कुल जो है वो बंद की हुई है, हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं जी कि ये सारे का सारा सामान जो लोग भेजना चाहते हैं रशिया को वो सारे का सारा यूएई से राउट करके वहां पे भेज रहे हैं, जिसपे कि बड़ा कंसर्न है यूनाइटेड स्टेट्स का, ब्रिटेन का और यूरोपियन यूनियन का। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने कहा जी कि यूएस डेलीगेशन जो है अभी रिसेंटली यूएई भी गया हुआ, यूएस डेलीगेशन यूएई में भी गया हुआ था इस सिलसिले में बात करने के लिए, और जो डेटा हमने जो सोर्स किया है वो ये शो कर रहा है कि ये सारे जो सैंक्शन गुड्स हैं बहुत सारे कंट्रीज यूएई के थ्रू भेज रहे हैं। तो ये जो ट्रेड हब बन गया है यूएई, इसका ये रूट तोड़ने की जरूरत है। तो अब ये बड़ी सीरियस बात है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये सैंक्शंस लगा देते हैं फौरन, तो अब अगर यूएई के ऊपर भी सैंक्शन, लेकिन लगाएंगे नहीं, मुझे नहीं लगता क्योंकि यूएई पे बिल्कुल सैंक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यूएई बड़ा आजकल प्यार दिखा रहा है इसराइल को। और अगर आपने गल्फ न्यूज या खलीज टाइम्स की कोई रिपोर्ट्स रीसेंट डेज में पढ़ी होंगी, कोई 75 के करीब ह्यूज इजरायली कंपनीज जो हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू की हुई है यूएई के अंदर, तो यूएई के ऊपर मुझे नहीं लगता सैंक्शंस लगाएंगे। वैसे भी यूएई इज अ वेरी लिबरल कंट्री, तो वो पाकिस्तान में के में जो मौलवियों ने हंगामे मचाए हुए ना उस तरह का कुछ है नहीं, तो पीपल लव टू डू बिजनेस ओवर देयर। तो इस तरह से द गार्डियन की एक स्टोरी है जी, और ये भी जो है आज बहुत ज्यादा आंखें चौंका देने वाली है, क्योंकि इसमें आपको पता ही है कि अंडर अब्राहम्स अकॉर्ड जो कि शुरू किया था ट्रंप साहब ने, कॉन्स्टेंटली यूएस सऊदी अरेबिया को कह रहा था कि भई तुम इसराइल के साथ दोस्ती बनाओ, केएसए अब कह रहा है, यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अब यूएसए को कह रहा है कि हम आपके साथ ट्रेड को बढ़ा सकते हैं माइनस इसराइल। ये जो इसराइल प्लान है तो प्लान बी, ये तो सऊदी अरेबिया जो है वो प्लान बी दे रहा है यूएसए को, और वो दे आर पुशिंग टू साइन अ डिफेंस पैक्ट, जो कि अभी आपको पता ही है कि एंथनी ब्लिंकन साहब भी गए हुए थे और उनकी मुलाकातें वहां पे मोहम्मद बिन सलमान के साथ भी हुई थी। तो वो कह रहे हैं जी कि हम इसराइल के साथ नॉर्मलाइज जो टाइज करेंगे उसके अंदर बहुत सारी चीजें शामिल हैं, लेकिन यूएसए पहले हमारे लिए ये करे। अब क्या करे, वो कहते हैं जी कि यूएसए हमारे साथ एक बायोलेटरल डिफेंस और सिक्योरिटी कमिटमेंट साइन करे, इसके अलावा हमारे साथ न्यूक्लियर कोऑपरेशन करे, हमको जो है बनाने दे एक जो है वो न्यूक्लियर प्लांट यहां पे, जो कि हमारी स्टेट की जो एनर्जी नीड्स हैं उसको पूरा करेगा, और इसके अलावा जो है आप हमारे साथ इनडेफिनेटली, आपको ये हमें बताना पड़ेगा कि क्या ये सब अगर हम आपके साथ कर लेंगे तो फिर इसराइल हमारी बात मानेगा एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट को खोलने, मतलब सेटअप करने के लिए। लेकिन अगर वो इस बात पे नहीं भी मानता है कि पैलेस्टीनियन स्टेट बनाए, तो आप हमारे साथ ये बायलैटरल ट्रेड करें, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें और हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके अंदर करें, और इसराइल जो है उसके साथ टाइज हम बाद में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो ये भी जो है बात आज काफी दुनिया के अंदर नजर आई और लोगों ने कहा कि भाई सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है अगर नहीं जोर देगा ये सारी एट्रोसिटीज जो है यहां पे रोकने के लिए और यू नो पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए, तो फिर और कौन बोल सकता है। बैंक ऑफ स्पेन जो है जी उसने आज बहुत ही खतरे की घंटी जो है वो बजाई अपने मुल्क में, और उसने कहा जी कि तकरीबन 24 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं बाय 2053 हमें हमारे मुल्क में आने पड़ेंगे, क्योंकि स्पेन की बहुत ही ज्यादा एजिंग पॉपुलेशन है और उसके अंदर जो पेंशन सिस्टम है वो काफी जो है वो इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो कहते हैं जी कि यहां पे जो रेट ऑफ बर्थ है वो कॉन्स्टेंटली गिरता चला जा रहा है और सब्सटेंशियल राइज देखा गया है इन द परसेंटेज ऑफ डेमोग्राफिक शिफ्ट, क्योंकि यानी कि बूढ़े लोग ज्यादा होते जा रहे हैं, एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, रिटायरमेंट के पेमेंट ज्यादा है और काम करने वाले कम हैं, और अगर काम करने वाले कम होंगे स्टेट के अंदर काम ही नहीं होगा तो स्टेट जो है वो पैसे कैसे जनरेट करेगा, कोई ना वहां पे काम कर रहा है, ना कोई ज्यादा उनके सिटीज में आके रह रहा है, ना उनकी गवर्नमेंट की मशीनरी चल रही है। तो वो कहते हैं जी कि अभी जो स्पेंडिंग पेंशंस में 2023 में थी इट टच 13.1% ऑफ जीडीपी, तो आज बैंक ऑफ स्पेन ने कहा है कि अगर 2025 तक ये स्पेंडिंग जो है 13.3% ऑफ द जीडीपी को टच करेगी तो फिर आपको जो है अपने सिस्टम सारे चेंज करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा और आपको माइग्रेशन जो है वो अट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग ये न्यूज सुन रहे हैं तो प्लीज पाकिस्तान में लोगों को बताएं जो कि मरे जा रहे हैं कनेडा आने के लिए, और कनेडा के अभी रूल्स सख्त हो गए हैं, तो अगर कोई स्पेन जाना चाहता है तो स्पेन के लिए आपको जाना आसान होगा, तो आप स्पेन की जो सिटीजनशिप है वो अगर अप्लाई करना चाहते हैं आप बिल्कुल करें, वैसे भी स्पेन इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। अमनेस्टी इंटरनेशनल की आज ये रिपोर्ट है जी, और इसके मुताबिक बांग्लादेश के अंदर जो लोग हैं उनकी बहुत ज्यादा, जो गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं वहां पे, उनकी मुश्किलें जो हैं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं, उनको कॉन्स्टेंटली वो फेस करते हैं फियर वायलेंस रिप्रेशन बाय बिग कॉरपोरेट्स, और यहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं अनचेक्ड जा रही हैं और गवर्नमेंट इसके लिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर रहा है। अमनेस्टी इंटरनेशनल की ये रिपोर्ट कहती है जी कि ये जो राना प्लाजा क्लैप्स किया था जिसमें कि 1100 गारमेंट वर्कर्स की डेथ हुई थी और हजारों ही जख्मी हुए थे, उसके बाद ये जो कलैप्स हुआ था और फायर लगी थी तजरीन फैशंस फैक्ट्री में जिसमें कि 112 लोगों की डेथ हुई थी, ये दोनों जो ढाका के अंदर जो उनका कैपिटल है वहां पे ये वाकई हुए थे, और उसके ऊपर कोई भी काम जो है वो नहीं किया गया और ना ही इनको जो है कोई कॉम्पेंसेशन दी गई है। ये जो फैक्ट्रीज हैं कॉरपोरेट्स की बड़ी बड़ी, यानी ये जो सेठों की कंपनियां हैं, इसके अंदर ना तो हेल्थ के ना सेफ्टी के कोई भी बिजनेस के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, और बहुत सारी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो हैं देखी जाती हैं, और बड़े लंबे लॉन्ग ड्यूटी आवर्स हैं, और टोटल इनकी वर्कर्स की जो सैलरी है पर मंथ, यानी कि ज्यादातर ये तो बेचारी औरतें ही इसके अंदर काम करती हैं, तो इनकी जो मंथली सैलरी है दैट इज ओनली $113 पर मंथ। तो 113, आपने बिल्कुल सही सुना, 113 पर मंथ जो है इनको मिलता है एज सैलरी, जो कि लोग समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है जी, तो ये अच्छा जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय राजा बादशाह जी। राजा बादशाह के पास जाएं ताकि अगर आपको राइट किस्म की कॉम्पेंसेशन और आपको राइट कवरेज चाहिए है, और वो कहते हैं जी कि आप मेरे पास आए, अगर आपके पास दो गाड़ियां और एक घर है, मैं आपके बहुत सारे पैसे यानी कि $1,775 बचाऊंगा। ऑल स्टेट के साथ काम करते हैं और इनका नंबर है 6472903773। इसके अलावा विलेज टेस्ट ऑन्टेरियो का लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे, दो इनके रेस्टोरेंट्स हैं फैसल चट्टा साहब के, आप दोनों में जा सकते हैं। سکتے ہیں. ایک مسز آگا میں ہے 4141 ڈکسی روڈ, اس کا نمبر ہے 9052323663, اور دوسرا جو ہے وہ اوکفل میں ہے 2294 لیک شور روڈ ویسٹ کے اوپر, اور اس کا نمبر ہے 9052262294 کے کا نمبر ہے, اور آپ ان کو فون کر سکتے ہیں. اچھا جناب, پاکستان کے اندر آج آپ کو پتا ہی ہے مے 1 ہے, تو ویسے میں نے آپ کو مبارک دی تھی تمام لیبرز جو ہیں میری طرح کے, ان کو آج مبارک ہو, لیبر ڈے ہے. مجد بھائی تو امیر لوگوں میں, مجد بھائی کو ہم نے کوئی مبارک نہیں دینی, تو میرے جیسے غریب جو مزدور ہیں ان کے لیے تو آج لیبر ڈے تھا آف کورس. تو آج پاکستان میں پریزیڈنٹ زرداری نے بھی اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی بڑی آج تعریف کی لیبر کلاس کی. انہوں نے کہا ان کی کانٹریبیوشن جو ہے ملک میں بہت زیادہ ہے, لیکن ان کو ڈگنیٹی سے کے ساتھ جو ہے وہ رہنے کی ضرورت ہے. زرداری صاحب نے کہا جی کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں ان کا بڑا رول ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی کہ ہم اب ان کی ویلفیئر کے لیے بہت سارے کام کریں گے, اور ڈومیسٹک جو ہمارے لیبر لاز ہیں ان کو انٹرنیشنل لاز کے مطابق ہم جو ہے انٹروڈیوس کروائیں گے اور امپروو کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک نیشنل ٹرائی پیٹریٹ لیبر کانفرنس بھی کریں گے, جو کہ لیبرز کی اور فارمرز کی ہیلتھ اور سیفٹی کے اوپر فوکس کرے گی. پاکستان اور یو ایس اے کا جی پھر سے ہنی مون پیریڈ شروع ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہی ہے نا کیوں, عمران خان صاحب کو امریکہ کو ہمارے انکل سیم کو خوش کرنے کے لیے ہٹا دیا گیا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ سائیں کیا بولتے ہو بولو, ہم آپ کے لیے سب کرنے کو تیار ہیں. ہیں جی, تو اس کے اوپر جو ہے وہ آج یو ایس اے جو ہے وہ آج کل بڑا پاکستان کے ساتھ خوش ہے. ہمج بھائی تو وہ شروع ہو گیا پھر سے ہنی مون پیریڈ پاکستان کا. اچھا جی, پاکستان اور یو ایس اے جو ہے انہوں نے اب جی ری افرم کیا ہے کہ ہم اپنی ٹریڈ کو بڑھائیں گے, پیار محبت بڑھائیں گے, ہیں جی باغوں میں گھوم گھوم کے گانے گائیں گے, انویسٹمنٹس کریں گے, ریجنل سیکیورٹی کے اوپر کام کریں گے. اور یہ جو ہوا ہے اس وقت ہوا ہے جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب واپس جو ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ڈیلیگیشن جو ہے لیڈ بائی ایکٹنگ انڈر سیکرٹری فار پولیٹیکل افیئرز جان بیس, یہ جو ہے یہ وزٹ کر رہا ہے فارن آفس کو, اور یہ لوگ قطر سے آئے ہیں. فارن سیکرٹری سائرس قاضی جو ہیں ابھی تک یہاں پہ نہیں ہے, ان کی ایبسنس میں جان بیس کی ملاقاتیں ایکٹنگ فارن سیکرٹری امبیسڈر رحیم حیات کے ساتھ ہوئی ہیں. ان کے ساتھ جو تھے پرنسپل ڈیپوٹی اسسٹنٹ سیکرٹری الزبتھ ہورسٹ اور یو ایس امبیسڈر ٹو پاکستان ڈونلڈ بلوم بھی جو تھے اس موقع پہ تھے. یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ہم پاکستانی آفیشلز کے ساتھ مل کے وائڈ رینجنگ جو ایشوز ہیں ریجنل اور بائی لیٹرل ان کے اوپر کام کریں گے, اور ہم ان کو ساری ہیلپ دینے کی کوشش کریں گے. بیس صاحب جو ہیں بھاگے بھاگے قطر سے اس لیے بھی آئے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے ابھی ریسنٹلی ایرانین پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی جو ہیں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کو ایک پائپ لائن بنانے کی ضرورت ہے جس کے جو آپ کو اپنے حصے کی بنائیں, جو ہم نے اس کے اوپر کام کر لیا ہے. اور امریکہ نے بہت زیادہ پاکستان کو زور دیا تھا کہ خبردار بھائی جان, دوستی نہیں کرنی ایران کے ساتھ, اور ہم سینکشنز آپ کے اوپر لگا سکتے ہیں, جس کا کہ جواب فارن آفس نے کہا تھا کہ بھئی ہماری انرجی کی کچھ نیڈز ہیں تو پائن ساڑھے طرف پیار دیکھ مگر پیار سے ہیں. تو اس سلسلے میں جناب کل آپ کو پتا ہی ہے کہ ڈونلڈ بلوم صاحب نے ہماری کرکٹ ٹیم کو بھی بلایا ہوا تھا, بڑا پیار ستکار کیا. تو آج جو ہیں یہ پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ, جان بیس وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. اچھا اب بڑی مزے کی بات ہے, ایک تو ابراہیم رئیسی صاحب آئے ہوئے تھے تو فوراً یہ آ گئے ہیں کہ نہیں نہیں پائن ایران کے دوستی نہیں کرنی. اب جبکہ یہ آئے ہوئے تھے آج ایز وی اسپیک آف ٹوڈے یعنی کہ مے 1 جب یہ آئے ہوئے ہیں اور وزٹ کر رہے ہیں پاکستان کو, تو آج ہی آپ کو پتا ہے کہ چائنا نے ایک پوری کی پوری ڈیل بروکر کی ہوئی ہے, جس میں کہ چائنا پاکستان اور ایران جو ہیں وہ یہ سارا ٹیررزم اور سیکیورٹی کوریڈور ایک بنانے جا رہے ہیں. تو آج اس کی یہ ٹرائی لیٹرل میٹنگ بھی اسلام آباد میں جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. تو ہن پاکستان کہندا ہے میں کہڑے پاسے جاواں, میں منجی کتے ڈاواں, ہیں جی امریکہ کی سنوں کہ چائنا کی سنوں, کس کی سنو؟ لیکن آپ کو چائنا کی زیادہ سننی چاہیے. نمبر آل اینی ویز امریکہ آپ کی سب سے بڑی بھائی ٹریڈ مارکیٹ ہے, آپ کو بہتر پتا ہے, ہم کون ہوتے ہیں آپ کو مشورہ دینے والے. تو یہ جناب بڑی کھچڑی پکی ہوئی ہے پاکستان میں, ہیں جی ایسے چل رہا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو ہے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پرنسپل ڈیپوٹی اسپوکس پرسن ودھان پاٹل صاحب جو ہیں انہوں نے بھی آج پاکستان کو بڑا پیار دکھایا. انہوں نے کہا جی ہم بڑی تعریف کرتے ہیں پاکستان میں جو ٹیررزم کے اندر کام کیا ہے اور اپنے سٹیزنز کو بچاتے ہیں اور ٹیررسٹوں کو مارتے ہیں, تو ہم اس کو جو ہے بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہم پاکستان کے ساتھ ڈائیلاگ کرتے رہیں گے, ہم ان کو فنڈنگ دیتے رہیں گے تاکہ ان کی کاؤنٹر ٹیررزم کیپیبلٹی بڑھائی جائے, بلڈنگ پروگرامز اگینسٹ ٹیررزم, اور ہم ان کو سپورٹ کریں گے انڈر ملٹری ٹو ملٹری انگیجمنٹ. आज तो इन्होंने ये कहा है, अभी आपको पता है, मैंने अभी आपको कल बताया, परसों बताया था कि एक यूएस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स के बड़े वायलेशन हैं। दो दिन पहले तुसी कह रहे पाकिस्तान कम सही नहीं कर रहे, आज तुसी कह रहे हो पाकिस्तान कम सही कर रहा है। वो पहन की चाहते हो तुसी अंकल सैम, प्लीज मेक अप योर माइंड, व्हाट डू यू मीन है जी। तो ये जनाब बस ये मिली जुली, वही मैंने कहा ना पाकिस्तान के सिलसिले में काफी खिचड़ियां पकी हुई हैं, तो जनाब ये चल रहा है। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जी साद दार साहब, आज वो बंजौल के अंदर गैम्बिया में पहुंचे हुए हैं क्योंकि वहां पे ओआईसी की 15 समिट जो है वो शुरू हो गई है। इसहाक डार साहब ने अपने एक्स के ऊपर लिखा कि यहां पे मैं बहुत सारे डिग्नेटरीज के साथ मिलूंगा और इसमें ये जो जीनोसाइड चल रहा है गाजा के अंदर उस पे और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। इनको जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो गैम्बियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी नानी जुवारा जो है उन्होंने इनको रिसीव किया अलॉन्ग विद फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान एम्बेसडर मोहम्मद सायरस सज्जाद काजी एंड पाकिस्तान एम्बेसडर टू सेनेगल साइमा मेमूना सैयद। ये जो अटेंड करने के लिए यहां पे आए हैं ये समिट, दिस विल बी बिटवीन May 4-5 और इसके अंदर उनकी मुलाकातें ओआईसी के काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ भी होगी May 2-3 में, और इसके अंदर ये जो कोई भी फाइनलाइज किया जाएगा एजेंडा और डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर भी ये अपनी आउटपुट देंगे। आईएसपीआर की आज एक रिपोर्ट आई है जी और इसके मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने प्रोफेशनल इंटरेस्ट की बातें और मिलिट्री टू मिलिट्री जो डिफेंस टाइज हैं उनको यूके के साथ बढ़ाने की बातें की। यूके के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल पैट्रिक सैंडर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आए हुए हैं और ये सेकेंड मीटिंग है जो ये इनके साथ कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उन्होंने जनरल सैंडर्स का बहुत शुक्रिया अदा किया फॉर इन्हांसिंग बायोलेटरल मिलिट्री टाइज और उन्होंने साथ साथ इसके जो है बहुत मुबारकबाद दी जनरल रोनल्ड वॉकर को भी जो कि रिप्लेस करेंगे जनरल सैंडर्स को एज नेक्स्ट CGS ऑफ यूके आर्मी। दोनों ने जो है आज पार्टिसिपेट किया ओपनिंग सेशन जो एक हुआ है 6th पाकिस्तान यूके रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस का जो कि हो रहा था एट नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद जिसके के अंदर डिफेंस और सिक्योरिटी का डायलॉग इन दोनों के बीच में हुआ। इसके इनके साथ जो है जनरल सैंडर्स के साथ 30 मेंबर डेलीगेशन जो है पाकिस्तान को अब